वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारमण ने रिकॉर्ड सातवीं बार बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 के बजट कुल व्यय 48,20,512 करोड़ रूपये अनुमानित है। इसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रूपये है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 16.9% अधिक है। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं, पहल और पैकेज की घोषणा की है। रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 5 वर्षों में हब और स्कोप व्यवस्था में 1000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये कर दिया गया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में करों की दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रूपये तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रूपये तक 10%, 10 से 12 लाख रूपये तक 15%, 12 से 15 लाख रूपये तक 20% और 15 लाख रूपये से अधिक आय पर 30% तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। बजट में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40 से घटाकर 35% कर दी गई है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रूपये से अधिक का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार पर 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रूपये का निवेश करेगी। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बजट में मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव है। कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए 3 और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% करने तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को घटाकर 6.4% करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट विकसित भारत के लिए है, जो चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा। यह समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि को युवा शक्ति के साथ जोड़ने के लिए ऐतिहासिक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बजट समावेशी विकास, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्योग जगत ने बजट का स्वागत किया है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा है कि बजट विकास के अनुरूप है और यह विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। फिक्की के अध्यक्ष अनिश शाह ने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देगा। बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं मिला। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा से मुलाकात की और एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने एक्ट ईस्ट और बिम्सटेक नीतियों पर चर्चा की है। श्रीलंका में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 82 रन से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। 179 रन के लक्ष्य के जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।